मिस्टर विजय, अब तो ये सौदा हो गया। एक बात कहूं आपसे, ये बिल्डिंग आप महंगी ले गए। अगर आप कहते तो शायद मैं 1-2 लाख रुपए कम कर देता। बुरा मत मानिए, आपको धंधा करना नहीं आता।
धंधा करना तो आपको नहीं आता मिस्टर अग्रवाल। अगर आपने मुझसे इस बिल्डिंग के 10 लाख रुपए भी और मांगे होते तो मैं दे देता।
अच्छा, ऐसी क्या बात है इस बिल्डिंग में?
आज से 20 बरस पहले जब यह बिल्डिंग बन रही थी, मेरी माँ ने यहाँ ईंटें उठाई थी। आज मैं ये बिल्डिंग अपनी माँ को तोहफा देने जा रहा हूँ।
ये एक विडंबना थी कि अपनी डायलॉग डिलीवरी से पूरे भारत को दीवाना बनाने वाले अमिताभ बच्चन ऑल इंडिया रेडियो के ऑडिशन में असफल घोषित किए गए थे। ये भी एक दिलचस्प तथ्य है कि अपनी शुरुआती फिल्म रेशमा और शेरा में सुनील दत्त ने उन्हें एक गूंगे का रोल दिया था। अमिताभ बच्चन को हिंदी फिल्मों में सबसे पहला ब्रेक ख्वाजा अहमद अब्बास ने दिया था। उन्होंने अपनी फिल्म सात हिंदुस्तानी में उन्हें एक मुस्लिम युवा का रोल दिया, वो भी उनके पिता हरिवंश राय बच्चन से पूछकर। योजना आयोग की पूर्व सदस्य और मशहूर लेखिका डॉक्टर सैयदा सैयदीन हमीद बताती हैं।
6 हिंदुस्तानी तो उनको मिल गए थे, अब सातवें की उनकी तलाश थी। तो इनका एक यंग असिस्टेंट था, इंदर राजानंद का बेटा, तो वो उन्होंने कहा मामू जान मैं लेके आता हूँ, मेरा एक दोस्त है। तो ये अमिताभ बच्चन को लेके आए। अच्छा, तो तुम कौन हो, नाम क्या है तुम्हारा? तो उसने कहा मेरा नाम अमिताभ है। पूरा नाम क्या? उसने कहा अमिताभ बच्चन। तो कह कहीं तो मेरे दोस्त हरिवंश राय बच्चन के तो बेटे नहीं हो? उसने कहा जी, बाप की मर्जी से आए हो? उसने कहा जी, मालूम है पेरेंट्स को? उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले उनको लिखूँगा। तो फिर उन्होंने इनको हरिवंश राय जी को ख़त लिखा कि ऐसा ऐसा है, आप अगर इजाज़त दें। तो उन्होंने फिर तार से उनको जवाब दिया कि अगर आपके साथ काम कर रहा है तो बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या करते थे? उसने कहा मैं 1500 रुपये पे बैंड बॉक्स में कलकत्ते में करता था। मतलब अब नहीं करते? उन्होंने कहा नहीं, मैं छोड़ के आ गया। अरे तुम छोड़ के आ गए, तुम्हें तो मैं पूरी फिल्म का सिर्फ 5000 दे सकता हूँ, मेरे पास इतना ही पैसा है। उन्होंने कहा आप मामू जान आप जो भी दें मैं तैयार हूँ।
आगे की घटनाएं इतिहास हैं। अमिताभ बच्चन अब्बास के इस जेस्चर को कभी नहीं भूले। बाद में उन्होंने एक जगह सात हिंदुस्तानी की शूटिंग को याद करते हुए कहा
कि ऐसी सोच थी कि जिस तरह से ये सेनानी लड़े होंगे उसी तरह हम लोग इस फिल्म को भी बनाएंगे। तो हम लोग सब यहाँ मुंबई के रेलवे स्टेशन से गाड़ी में गए शूटिंग करने गोवा, 3rd क्लास के कंपार्टमेंट में बैठ करके गए। और वहाँ पर जब भी अवसर मिला पैदल चलते थे हम लोग, अपना सामान वामान ढो करके। रहने के कोई होटल नहीं होता था, जहाँ सर्किट हाउस छोटे छोटे होते थे, जहाँ बिजली पानी वगैरह नहीं होता था, वहाँ पर हम लोग रहते थे। एक ही हॉल किस्म का एक वहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ था, वहीं पर पूरा कास्ट क्रू सब एक साथ सोता था। चाहे आप कलाकार हों, चाहे आप कैमरामैन हों, चाहे आप स्पॉट बॉय हों, सब एक साथ वहीं सोते थे। उस ज़माने में होल्ड ऑल होता था, पता नहीं आप लोग होल्ड ऑल समझते हैं कि नहीं। आजकल पूरा बोरी बिस्तर जो है वो एक होल्ड ऑल में से बंद कर दिया जाता है। एक तरफ तकिया होता था, फिर बाकी सब रजाई वगैरह उसमें गोल ऐसे बांध करके उसे ले जाया करते। सब लोग अपना होल्ड ऑल खोलते थे, उसी के अंदर सो जाते थे, सुबह उसको लपेटा और चल पड़े। कई बार मैं रात को जब सो रहा होता था तो नींद उठती थी तो देखता था कि अब्बास साहब भी वहीं बगल में ही ज़मीन पर ही लेटे हुए हैं। और क्योंकि बिजली नहीं थी तो वो लालटेन लेकर के काम किया करते थे अगले दिन की डायलॉग्स लिखने के लिए।
ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में पहली बार पूरे भारत की नज़र अमिताभ के अभिनय पर गई और उन्हें 1972 में फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। राजेश खन्ना की जीवनी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार लिखने वाले यासिर उस्मान बताते हैं।
फिल्म का क्लाइमैक्स है कि राजेश खन्ना की मौत हो गई और अमिताभ उन्हें झिझोड़ रहे हैं कि तुम ऐसे नहीं मर सकते हो, कैसे मर सकते हो तुम मुझसे बात किए बिना। और अचानक राजेश खन्ना की आवाज़ आती है पीछे से, जो कि वो टेप है जो कि बड़ा दिलचस्प एडिटिंग टूल भी है अगर हम फिल्म मेकिंग की टेक्निक देखें तो। उस खास सीन के बारे में जब वो मरते हैं तो अमिताभ बच्चन उस वक्त उतने बड़े स्टार नहीं थे तो वो बहुत घबरा रहे थे कि मैं कैसे करूंगा, ये इतना मौत का सीन है, मैं मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा। तो महमूद उनके बड़े करीब थे तो अमिताभ ने पूछा कि महमूद भाईजान मैं समझ नहीं पा रहा हूं, बड़ा परेशान हूं, 2 रातों से सोया नहीं कि राजेश खन्ना के साथ डेथ सीन करना है, राजेश खन्ना का मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो उन्होंने कहा कि महमूद ने बस एक लाइन कही कि तुम सोचो राजेश खन्ना वाकई मर गए, मतलब राजेश खन्ना मर गए हैं, समझ रहे हो इस बात को, कितनी मतलब राजेश खन्ना कौन है मालूम है ना, राजेश खन्ना मर गए, इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा सीन।
मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा, 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं, बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम, बोलो बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे।
बाबूशाय बाबूशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पर उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है।
आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं।
लेकिन व्यावसायिक सफलता के लिए अमिताभ को 16 और फिल्मों का इंतजार करना पड़ा। ये सफलता उन्हें जंजीर फिल्म में जाकर मिली। हाल ही में अमिताभ बच्चन की जीवनी अमिताभ बच्चन, अ कलाइडोस्कोप लिखने वाले मशहूर पत्रकार प्रदीप चंद्रा बताते हैं।
अगर आपको 16 फिल्मों तक काम मिलता रहा, इसका मतलब आपने अपनी जगह ऑलरेडी बना ली थी। अगर न बनाई होती तो 3 फिल्मों के बाद आपको कोई नहीं पूछता। अगर वह 16 फ्लॉप के बाद तो दूसरा एक्टर अगर होता तो उसकी फिल्म ही कोई 4 के बाद 5वीं नहीं देखेगा। तो दैट शोज कि उन्होंने अपनी जगह तो ऑलरेडी दर्शकों के मन में बना ली थी। कभी कभी क्या होता है कि समय भी ऐसा होता है, आपका साथ देता है। ऐसा स्क्रिप्ट जिसको देव आनंद ने रिफ्यूज कर दिया कि इसमें भाई रोमांटिक एंगल नहीं है, रोमांटिक सॉन्ग नहीं है, राजकुमार ने रिजेक्ट कर दिया, धर्मेंद्र ने रिजेक्ट कर दिया। सोचिए इतना स्ट्रांग फिल्म जिसमें इतनी बड़ी हिट जो फिल्म हुई उसको इतने बड़े बड़े एक्टरों ने नकार दिया। इससे पता चलता है कि बच्चन जी जब कोई स्क्रिप्ट देखते थे या पढ़ते थे तो फिर भी उनके मन में होता था कि भाई इसमें हो सकता है कि मैं जो है बाजी पलट दूं, और वो हुआ भी।
तुम्हारा नाम शेर खान है?
इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। खैर अब मुलाकात हो गई।
जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं।
1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अमिताभ बच्चन ने अपने पुराने दोस्त राजीव गांधी के अनुरोध पर राजनीति में प्रवेश किया और इलाहाबाद से चुनाव लड़ने का फैसला किया। उनका मुकाबला था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हेमवती नंदन बहुगुणा से। उस चुनाव को कवर करने वाली और द मैरी गोल्ड स्टोरी की लेखिका कुमकुम चड्ढा याद करती हैं।
पहले तो वो अपना रोल स्विच नहीं कर सके। He kept thinking that he is a film star contesting an election. तो वो कभी एक political level पर आए ही नहीं। दूसरा, वो सर्किट हाउस में बंद कमरों से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और अजिताभ उनके जो भाई हैं जिनके साथ वो बाद में फॉल थ्रू किए, अजिताभ आते थे, उनका रोल ये होता था कि लोगों को भगाना। तो सर्किट हाउस का गेट बंद रहता था, अमिताभ के कमरे का दरवाज़ा बंद रहता था और वो जो बीच का ड्राइववे था वहाँ अजिताभ आकर हर रोज़ सुबह, चाहे वो रिपोर्टर्स हों, चाहे लोग हों, क्योंकि लोग भी थे, चाहे वो वोटर्स हों, उन सबको भगाने का काम अजिताभ करते थे। एज अगेंस्ट दैट, बहुगुणा जी के आप घर पर जाएँ तो आपको वेलकम किया जाता था, बहुगुणा जी सबसे मिलते थे, तो एक बहुत शार्प कॉन्ट्रास्ट था। उनकी रटी रटाई 5 या 6 सेंटेंसेस होते थे और हर रैली में वो वही लाइंस बोलते थे और उसी अंदाज में बोलते थे। तो उनको न्यूएंसेस इलेक्शन की समझ नहीं आई, हीट एंड डस्ट का उनको बिल्कुल वो नहीं था। और ये मैंने बाद में लिखा भी था कि अगर इलेक्शन ट्रांसफॉर्म हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल हार रहे थे, देयर इज नो क्वेश्चन, और अगर ये ट्रांसफॉर्म हुआ तो जया की वजह से, क्योंकि शी केम आउट ऑन द स्ट्रीट्स, तो वो भाभी देवर मुंह दिखाई वाले वो जितने भी वाक्याए थे वो सब तब हुए।
लेकिन राजनीति में अमिताभ बहुत अधिक दिनों तक नहीं रह पाए। बोफोर्स घोटाले में नाम आने पर उन्होंने अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। फिल्म अभिनेत्री रेखा के साथ उनका नाम जोड़ा गया लेकिन अमिताभ ने हमेशा इसका खंडन किया। अमिताभ की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर मशहूर पत्रकार करण थापर को उनसे इंटरव्यू लेने का मौका मिला।
We decided we would do a long interview to commemorate Amitabh's 50th birthday. तो बॉम्बे में हम थे उनके पुराने घर प्रतीक्षा में और पहले टेप चेंज के मौके पे इन्होंने मुझे कहा कि इन्होंने एक इंटरव्यू देखा था काफ़ी महीने या काफ़ी साल पहले वॉरेन बेटी का, जिसमें इंटरव्यूअर वॉरेन बेटी साहब से पूछते हैं कि हम, मैंने आपके बारे बहुत कहानियाँ सुनी है कि आपने काफ़ी औरतों के साथ रिश्ता रखा है, उनके बारे में मुझे बताइए. एंड आई सेड टू माय सेल्फ दिस इज एन अमेजिंग थिंग टू से टू समवन हु इज इंटरव्यूइंग यू. मुझे कहाँ इशारा दिया जा रहा है, क्या ये चाहते हैं कि इसी तरह की क्वेश्चनिंग मैं भी करूँ. तो जब टेप चेंज ख़त्म हुआ मैंने कहा कि देखिए आपने मुझे अभी ये कहानी बताई है तो लेट मी टेक अ लीफ आउट ऑफ योर बुक.
मैंने उनसे पूछ ही डाला कि शादी के बाद आपका किसी महिला से इश्क हुआ है. अमिताभ ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, नहीं कभी नहीं. मैंने फिर पूछा, रेखा से भी नहीं? नहीं उनसे भी नहीं. मैंने उनके बगल में बैठी हुई उनकी पत्नी जया भादुड़ी से भी पूछ लिया, क्या अमिताभ जो कह रहे हैं उस पर आपको कोई विश्वास है? जया ने जवाब दिया, मैं अपने पति पर हमेशा विश्वास करती हूँ. बात यहीं पर खत्म नहीं हुई. अमिताभ बच्चन ने इसरार किया कि इंटरव्यू के बाद हम खाने के लिए रुकें. जब हम डाइनिंग रूम में खाने के लिए पहुंचे तो अमिताभ बच्चन का अब तक रुका हुआ गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फटा. इसकी शुरुआत तब हुई जब जया ने उनसे पूछा कि आप चावल लेना पसंद करेंगे. अमिताभ ने तमक कर जवाब दिया, तुम्हें पता है मैं चावल नहीं खाता. जया ने कहा, मैं चावल खाने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रोटी आने में थोड़ी देर है. तब तक अमिताभ का गुस्सा सातवें आसमान पर था. वो चिल्लाए, तुम्हें पता है मैं कभी चावल नहीं खाता. अब हमारी बात समझ में आने लगी थी कि मेरे सवालों से उपजे गुस्से को अमिताभ ने जिस तरह रोक रखा था वो अब बाहर आ रहा था. हमारे लिए ये थोड़ी परेशानी की बात थी क्योंकि हम उनकी ही खाने की मेज़ पर बैठकर उनका दिया खाना खा रहे थे. हम 15 मिनट तक वहां रहे. इस बीच खाने की मेज़ पर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा. अगले दिन जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मुझसे चैनल की मालकिन शोभना भारतीय ने कहा कि मैं अपने इंटरव्यू से अमिताभ के इश्क वाला सवाल हटा दूं. मैंने वो हिस्सा हटा भी दिया लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई. मैंने अपने एक पत्रकार मित्र आनंद सहाय से संपर्क किया जो उस समय पायनियर अखबार में काम करते थे. उन्होंने ये खबर पूरे 8 कॉलम में अपने अखबार में छापी. उन्होंने इस खबर में मेरा नाम नहीं लिया लेकिन इसका स्रोत मैं ही था.
लेकिन इसके ठीक विपरीत कुमकुम चड्ढा को अमिताभ का एक दूसरा ही रूप देखने को मिला जब वो उनके पिता हरिवंश राय बच्चन को इंटरव्यू करने मुंबई गई.
ही वॉज वेरी फोर्थकमिंग और अमिताभ बहुत बहुत बिजी थे तब. सो आई लैंडेड इन बॉम्बे थिंकिंग कि अब कितना होगा, कैसे होगा, कब अवेलेबल होंगे, बिकॉज अमिताभ के बिना हरिवंश राय जी से बात नहीं हो सकती थी और बात उनके साथ भी नहीं हो सकती थी क्योंकि हरिवंश राय जी एज आई सेड बोलते ही नहीं थे. और मैं वहाँ पर 4 या 6 दिन लगे थे जब ये स्टोरी मेरी कंप्लीट हुई. एंड एवरी मॉर्निंग 9 बजे अमिताभ फ़ोन करते थे और ख़ुद फ़ोन से, कोई सेक्रेटरी नहीं, कोई कुछ नहीं. ही वुड कॉल माय होटल, ही वुड होल्ड ऑन टिल द होटल वुड कनेक्ट मी. तब मोबाइल फ़ोन्स थे नहीं. एंड वो पूछते थे, व्हाट टाइम वुड यू लाइक टू कम? और मेरा रिएक्शन ये होता था कि व्हाट टाइम आर यू फ्री, बिकॉज ही वॉज अ बिजी मैन. आई हैड गॉन ओनली फॉर दैट स्टोरी. और वो कहते थे, आई विल एडजस्ट, यू टेल मी व्हाट टाइम यू विल कम. और उसके बाद 2 घंटे प्रैक्टिकली रोज, समटाइम्स 3 घंटे, क्योंकि हरिवंश जी बोलते ही नहीं थे. वी वुड सिट देयर क्वाइटली, अमिताभ उनसे कोशिश, और 3 या 4 घंटे रोज अपने बिजी शेड्यूल से एट माई कन्वीनियंस, जो क्या वो कैंसिल करते थे, क्या वो होता था. और उसके बाद मैंने फिर उनकी सेक्रेटरी से पूछा कि लेट मी नो हिज टाइम बिकॉज आई कैन एडजस्ट. एंड शी सेड, नो मिस्टर बच्चन हैड सेड द प्रायोरिटी इज योर्स.
70 के दशक के मध्यकाल और पूरे 80 के दशक में अमिताभ की लोकप्रियता अपने चरम पर थी. कहा जाता था कि बच्चन की फ्लॉप फिल्में भी दूसरी हिट फिल्मों से अधिक व्यवसाय करती थी. 1991 में टाइम पत्रिका ने बच्चन के लिए एक वाक्य लिखा था कि बॉलीवुड में 1 से लेकर 10 स्थानों तक सिर्फ बच्चन ही काबिज है. बच्चन के जीवनीकार प्रदीप चंद्रा बताते हैं.
बच्चन जी में मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात यह थी कि उनका पूरा लुक जो था बहुत एलिगेंट था. अगर बच्चन जी सूट पहने और कोई और एक्टर पहने, उनका सेंस ऑफ ड्रेसिंग, उनका सेंस ऑफ टॉकिंग, उनकी भाषा, मेरी जावेद अख्तर से बात हो रही थी तो जावेद साहब ने बताया कि भाई इनकी जो पंक्चुअलिटी और जिस तरह से इनका जो बिहेवियर ये सब था, उसने इनको जो है बहुत फायदा दिया. क्योंकि उसके पहले तो फिल्मों का ये था कि भैया एक्टर 12 बजे का दो बोलो तो 4 बजे आएंगे, उसके बाद किसी के कोई नशे में आ रहे हैं, कोई अपना चमचों का ट्वीट लेके आ रहा है, ये 7 बजे का शिफ्ट होगा तो ये 6:30 बजे जाके अपनी कार में बैठ जाएंगे.
बच्चन की सफलता का राज है उनकी शिष्टता, उनका कपड़ा पहनने और बातचीत करने का तरीका और उनकी भाषा दूसरे फिल्म कलाकारों से काफी भिन्न है. प्रदीप चंद्र एक दिलचस्प किस्सा याद करते हैं.
एक दिन मुझे एक शूट करना था तो मैंने बच्चन जी से कहा स्पेशल नंबर के लिए, ये बच्चन जी ऐसा फोटो शूट करना है जिसमें दिखे कि आप बंबई में हो. तो कहने लगे बताओ. तो बात हुई कि टैक्सी में हम जाके शूट करेंगे. उनका फोन आया उनके ऑफिस से कि 7 बजे के लगभग वो कहीं जाने वाले हैं, तब आप जो है आ जाइए। थोड़ी देर बाद मेरे मन में आया कि टैक्सी से अगर रात को जाएंगे तो एक तो अंधेरा रहेगा, अवेलेबल लाइट में फोटोग्राफी नहीं हो पाएगी, और फ्लैश से लेंगे तो बहुत फ्लैट होगा। तो मैंने सोचा मैं कुछ और करूंगा। खैर मैंने उनको फोन किया और मैंने कहा कि 7 बजे बहुत लेट हो जाएगा, कुछ जल्दी कर सकते हैं क्या? तो ये हुआ कि 5 बजे आ जाइए। तब तक मेरे दिमाग में कुछ और आइडिया आया और मैंने क्या किया कि एक मैं जूते पॉलिश वाले के पास गया और मैंने उससे कहा कि भाई एक आदमी का जूता पॉलिश करना है मगर तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, वहां बैठना पड़ेगा और 1 घंटे का समय लगेगा। तो उसने कहा 1 घंटे का तो मैं 100 रुपया लूंगा। मैंने बिठा लिया उसको और बच्चन जी के घर के जरा सा आगे एक पेड़ था उसके नीचे मैंने कहा तुम अपनी यहाँ दुकान लगा लो। उसने दुकान लगा लिया। तो जब मैं गया जलसा में तो बच्चन जी आए, एकदम तैयार थे, टाई वाई लगाए हुए थे। मैंने कहा बच्चन जी थोड़ा सा चेंज हो गया है। बोले क्या? मैंने कहा जूता पॉलिश करवाना है आपको। बोले अरे कहाँ जूता पॉलिश करवाने जाएगा। मैंने कहा कहीं ज्यादा दूर जैसे जाने की जरूरत नहीं, बाहर ही पॉलिश वाला बैठा हुआ है। बोले चलिए। तो आए बाहर और आके खड़े हो गए और जूता पॉलिश करवाने लगे और मैं थोड़ी दूरी पे जाके जूम लेंस से उनकी फोटो ले रहा था। उसी समय एक मशहूर अखबार के मैगजीन के एडिटर जो बहुत करीब थे बच्चन जी के, वो वहां से कार से गुजरे और उन्होंने मुझे भी देखा और बच्चन जी को भी देखा। तो अगले दिन उनका फोन आया कि प्रदीप कल मैंने तुमके बच्चन को डुप्लीकेट को फोटोग्राफ करते देखा। मैंने कहा भाई वो डुप्लीकेट नहीं थे, वो अमिताभ बच्चन जी ही थे। जब बच्चन जी का शूट हो गया और वो चले गए अंदर, तो इस पॉलिश वाले को जब मैंने 100 रुपया दिया तो उसने मुझे कहा सर अगर आप मुझे पहले बताते कि बच्चन जी का जूता पॉलिश करना है तो मैं आपको 200 रुपया देता।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।